मेरे दिल अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 29 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और साथ ही मित्रों हार्दिक रूप से स्वागत भी करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले दो दिनों से हम लोग खासकर अपनी दिमागी संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दिमागी संरचना का मतलब इसका जैविक शास्त्र से नहीं है कि किससे बनता है, कौन कौन सी नर्व्स होती हैं, कैसे काम करता है, नॉट एट ऑल। उनके उसके विचारों के स्वरूप को, उसके विचारों के चरित्र को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और खासकर यह कोशिश मुझे लगता है मित्रों कि जरा भी हमें सफलता दिला सकी, यानी कि हम कुछ भी थोड़ा सा भी समझ पाए, तो कम से कम मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी सबकी जिंदगियों में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का सकारात्मक बदलाव आ सकता है। और कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी मैं उसे इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप इस विषय की संवेदनशीलता को समझ सकें, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे जान सकें, और जब ऐसा होगा तभी सही मायने में आप इस विषय को तरजीह देकर ध्यान से सुन भी सकेंगे। दोस्तों, आज के लिए मैंने जो टाइटल चुना है वह है मृत्यु सबसे बड़ा सच है। मृत्यु सबसे बड़ा सच है, यह विषय मैंने क्यों चुना? कल आपने सुना आशंकाओं के बारे में कि किस तरीके से हमारा पूरा दिन आशंकाओं से गुजर जाता है, और मुश्किल की बात यह है कि आज का दिन तो गुजर गया आशंकाओं से भरा हुआ, आशंकाओं में जीते हुए। हम ये अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि नहीं अब कल ऐसा नहीं होगा तब तो ठीक है, हम एक दिन काट लेंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि कल भी वैसा ही होता है, और उससे भी बड़ी मुश्किल है कि परसों भी वैसा ही होता है, यानी कि फिर पूरी जिंदगी इसी तरह के होने का एक सिलसिला बन जाता है, अंतहीन सिलसिला। तो उसी आशंका से जुड़ा हुआ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक तथ्य होता है, एक जो विचार होता है मृत्यु, वह मित्रों वह होता है मृत्यु का विचार। आप सोच करके देखिए कि एक दिन में कितनी बार हमारे दिमाग में यह थॉट आता है, यह विचार आता है कि कहीं हमारी मृत्यु न हो जाए। जब हम किसी के मृत्यु की खबर सुनते हैं तो अफसोस होता है, लेकिन तुरंत ध्यान अपनी तरफ एक सेकंड के लिए चला जाता है कि अच्छा ये मेरे साथ भी तो घटित हो सकता है। हालांकि यह बात अलग है कि यह विचार आने के बाद तुरंत गायब भी हो जाता है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। महाभारत में जो यक्ष प्रश्न उठाया है गया है वो यही है कि व्यक्ति अपने सामने लगातार मरते हुए लोगों को देखता रहता है, लेकिन खुद के बारे में यह सोचता है कि यह घटना मेरे साथ कभी नहीं घटेगी, यानी कि मैं कभी नहीं मरूंगा। इसके बावजूद मित्रों लगातार मृत्यु का भय अंदर से हमें सताता रहता है। जरा सा भी अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो लगता है कि अरे बाप रे, कहीं यह बहुत बड़ी बीमारी का रूप न ले ले, कहीं यह कैंसर तो नहीं है, कहीं इससे मेरा जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। जब हम यात्रा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं कि भगवान हमारी यात्रा सुखद तरीके से पूरी हो जाए, उसके पीछे कारण क्या है, कि कहीं ऐसा न हो कि ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो जाए कि राम नाम सत्य हो जाए। सोच करके देखिए कि कितनी बार हमारा दिमाग केवल मृत्यु की भय से आशंकित होकर के अपनी क्षमताओं को सरेंडर करता रहता है, समर्पण करता रहता है, और वह घटना जो आज तक नहीं घटी। सीधी सी बात है कि आज तक नहीं घटी है इसीलिए मैं आपसे बोल पा रहा हूं और आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर यह घटना घटित हो गई होती तो बात खत्म हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब यह घटना घटित हो भी जाएगी, सोच करके देखिए, थोड़ा सा तर्क शास्त्र का इस्तेमाल कीजिए कि जब घटना घटित हो भी जाएगी, मान लीजिए कि मेरी मृत्यु हो गई, तो इसका अनुभव करने वाला मैं तो नहीं रहूंगा ना। ठीक है, मेरी मृत्यु को मेरे परिवार के लोग, मेरे स्नेही जन, मित्र जन अनुभव करेंगे कि ठीक है अब आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है या थोड़ा सा खालीपन का एहसास हो रहा है। हालांकि वो सारा खालीपन, सारा सूनापन कुछ दिनों के बाद वो भी भर जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिंदगी तो बहुत विराट है, बहुत विशाल है, बहुत ही महान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन की निरंतरता को तो बने रहना ही चाहिए। वो सब भी भर जाएगा, वो लगातार बना नहीं रहेगा, जो खालीपन है वो बना नहीं रहेगा। लेकिन मित्रों, यहां जो सबसे बड़ी बात है कि जिससे मैं डर रहा हूं, मृत्यु से मान लीजिए मैं डर रहा हूं, तो घटना घटित होने के बाद उसका दुख मुझे लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं चोट लगने से डर रहा हूं, तो जब मुझे चोट लग जाएगी तब मैं उसके दर्द को झेलूंगा। मैं इसलिए डरता हूं कि यार वो दर्द झेलना पड़ेगा, वो बहुत तकलीफ देह है, तो मुझे चोट न लगे, मेरा पैर न टूटे, मैं उससे घबराता हूं। मैं बीमारी से क्यों घबराता हूं? हर कोई, मैं कह रहा हूं तो मतलब आप सब, हम सब उसमें शामिल हैं। मैं बीमारी से इसलिए घबराता हूं कि यार बिस्तर पकड़ लेना पड़ेगा, फिर समय कैसे कटेगा, फिर जो काम करना है वो काम कैसे होगा, दूसरों के लिए मैं बोझ बन जाऊंगा, इतना पैसा भी लगेगा, जिंदगी का सारा आनंद खत्म हो जाएगा, यार बीमार न पड़ूं। यानी कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तो उसके जितने भी दुख होंगे, उसकी जितनी भी तकलीफें होंगी, उनका मैं अनुभव करूंगा, तो इसलिए मैं उनसे डरता हूं। और यह डर काफी कुछ वाजिब भी है, काफी वाजिब है, सही है। लेकिन मृत्यु के साथ तो सोच करके देखिए कि यह भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाएगी उसका अनुभव करने वाला मैं नहीं रहूंगा। कि उसका अनुभव अच्छा होता है बुरा होता है कुछ नहीं, मैं कुछ देख ही नहीं सकूंगा, इस पृथ्वी से मेरा नाता शून्य हो जाएगा, एकदम कट जाएगा, जैसे कि पतंग की डोर पतंग से अलग हो गई हो। फिर तो कोई उससे डरने की क्या बात होती है, आप सोच करके देखिए, जिसका अनुभव करने के लिए मैं रहूंगा ही नहीं, फिर उससे क्या डरना, डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यदि मेरे अंदर यह साहस आ जाए, साहस की बात चलिए छोड़िए, अगर मेरे अंदर यह समझ ही आ जाए कि यार अगर हो भी गई मृत्यु तो ठीक है, खत्म हो गया ना, उसका मुझे कोई अनुभव नहीं होगा, क्या होगा बाद में कोई नहीं जानता, सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, प्रमाणित कोई भी बात नहीं है, आप जिस पर भी यकीन करना चाहें आप यकीन कर लीजिए, तो ठीक है, बाद में जो होता होना है वो होता रहेगा, अभी तो बात खत्म हो गई ना। यदि मेरे अंदर केवल इतनी समझ आ जाए तो आप देखेंगे कि मृत्यु का जो भय है वो अचानक कम हो जाएगा, घट जाएगा, सच पूछे तो खत्म सा ही हो जाएगा। जैसे मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि जब भी मैं सुबह अखबार पढ़ता हूं तो आप सभी अखबारों में देखेंगे कि कुछ एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में एक थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है जहां पर उठावना है या किसी का अंतिम संस्कार होना है, तो उसकी खबरें, मृत्यु की खबरें, मतलब परिवार के लोग उसमें छपवा देते हैं उनके चित्र सहित, आपने अखबारों में देखा होगा। मैं इसे रोज आना पढ़ता हूं और सिर्फ ये सोच करके पढ़ता हूं कि मृत्यु से साक्षात्कार हो, रोज मृत्यु से साक्षात्कार, कि ठीक है ये इनके साथ हुआ है, कभी उसी जगह पर मेरा भी चित्र होगा। यह केवल यह रोज का साक्षात्कार आपके अंदर एक अलग किस्म की ताकत पैदा कर देता है, अलग तरह का साहस और अलग तरह की एक समझ पैदा कर देता है। या यूं कह लीजिए कि ये रोज किए जाने वाले जिम में जिम की तरह है, जो धीरे 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 आपके मसल्स को मजबूत बना देता है, क्योंकि आप वो रोज कर रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक जातक कथा सुनाना चाहूंगा, जातक कथा जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई कथाएं हैं। गौतम बुद्ध एक जगह कहीं उपदेश दे रहे थे, बैठे हुए थे, इतने में ही एक औरत दौड़ती हुई रोती हुई गौतम बुद्ध के पास आई और पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगी। बुद्ध ने पूछा कि क्या बात है, उसने कहा कि मेरा पुत्र मर गया है, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए और वो अपने साथ अपने मरे हुए पुत्र को, छोटा बेटा था, लेकर के आई भी थी, बिल्कुल बालक था, शिशु था, और उसने अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया। बोले इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, प्रभु आप मेरे इस बच्चे को जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल इसे जीवित कर सकता हूं, बिल्कुल जीवित कर देता हूं, तुम थोड़ा सा मन में तसल्ली लाओ, बस तुमको एक काम करना होगा। वो जो मां थी वो खुश हो गई, वो तो बच्चे के जीवन के लिए एक काम क्या कितने भी काम करने को तैयार थी। बोले कि प्रभु बताइए, मैं कुछ भी कर सकती हूं अपने बच्चे को जीवित करने के लिए। बोले तुम एक काम करो, तुम नगर में जाओ और किसी भी घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, एक मुट्ठी सरसों, लेकिन बस शर्त एक है कि वह सरसों ऐसे घर से हो जहां आज तक कोई मृत्यु न हुई हो, वहां से तुम एक मुट्ठी सरसों लेकर के आ जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। वो मां खुश हो गई। अब वो नगर में गई और हर घर में दरवाजा खुलवाती थी, हर घर का, तो मांगती थी कि सरसों, एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए, वो कहते थे हाँ ला रहे, लेकिन फिर वो शर्त सुनाती थी कि आपके यहां अभी तक किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहां तो मृत्यु हो चुकी है। अब इस कथा का अंत कहां होगा मित्रों? इस कथा का अंत यहां होता है कि वो फिर औरत लौटकर बुद्ध के पास आती है और बुद्ध को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने बच्चे का शव उठाती है और चली जाती है। उसके चेहरे पर जो विषाद था, जो तकलीफ थी, जो दुख था, वो समाप्त हो चुका होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसे सत्य का ज्ञान हो चुका था कि कोई भी घर इस पूरे के पूरे नगर में ऐसा नहीं है जहां मृत्यु नहीं होती है। अगर इस नगर में कोई घर नहीं है तो सीधी सी बात है कि इस पृथ्वी पर भी कोई ऐसा घर नहीं है जो मृत्यु रहित हो। यानी कि मेरे भी बच्चे की जो मृत्यु हुई है, इसे मैं एक जगत का नियम ही मानकर चलूं, जीवन का नियम ही मानकर चलूं कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है। बात खत्म हो गई। यह बात अलग है कि इस तरह की अकाल मृत्यु, जो कि बच्चा है, शिशु है, उसकी इस तरह से मृत्यु हो जाए तो मां बाप के लिए अपने आप को समझाना इतना आसान नहीं होता। मित्रों, मैं व्यावहारिक पक्ष उसका बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे यह जरूर लगता है कि यदि यह सत्य हम जान लेते हैं तो तकलीफ होगी, परेशानी होगी, दुख होगा, मन विषाद में डूब जाएगा, शोक मग्न हो जाएगा, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है, उसका जो दर्द है, वो थोड़ा सा कम जरूर हो जाएगा। तो सत्य में इतनी ताकत होती है क्योंकि सत्य हमारी आंखों को खोल करके उसके देखने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। हम बहुत आगे तक की देख पाते हैं। जो व्यक्ति सत्य को जितना कम जानेगा वह उतना कम देख पाएगा। उसके पास ज्ञान की परिधि उसकी उतनी ही छोटी है। वह उतने ही छोटे से एरिया को पूरा का पूरा ब्रह्मांड समझ लेता है, और जो अपने छोटे से एरिया को ब्रह्मांड समझ लेता है, फिर वो अपने दुख को भी सीधे सीधे ब्रह्मांड का दुख समझ लेता है। लगता है कि विश्व में इससे बड़ा तो कोई दुख है ही नहीं, इससे बड़ी कोई तकलीफ है ही नहीं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि छोटी सी परेशानी आई, छोटा सा दुख आया, छोटी सी तकलीफ, उसको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी तकलीफ हो गई हो, बहुत बड़ा दुख हो गया हो, जबकि वो है नहीं। दुख तो है, तकलीफ तो है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं है। और जो ये जान लेता है कि नहीं, बिना दुख और तकलीफ के जीवन ही नहीं है, कि अगर मुझे धान की खेती करनी है और भात दाल भात खाना है तो जो धान है उसमें से भूसा निकलेगा ही, तो भूसा क्यों है, इसकी तकलीफ क्यों है? मुझे ये मानकर चलना चाहिए कि अगर चावल भूसे से लिपटा हुआ नहीं होगा तो वो चावल ही नहीं होगा। चावल होता ही धान में, धान के फॉर्मेट में है, उसके ऊपर एक इस तरह की लेयर होती ही होती है, उसके बिना चावल का अस्तित्व नहीं है। कांटे गुलाबों के बीच में ही खिलते हैं, इस अफसोस का कोई अर्थ नहीं है कि काश गुलाब में कांटे नहीं होते। स्वीकार ये करना है कि कांटे हैं तो गुलाब। तो मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। कल फिर हम लोग मिलेंगे और नए विषय पर बात करेंगे। मेरे पास कुछ मेल आए हैं जिसमें जो विषय सुझाए गए हैं, एक तो छोटी छोटी बातों से हम परेशान हो जाते हैं, यह विषय है दोस्तों। दूसरा डिप्रेशन को लेकर के सजेशन दिया गया है, मैं इन पर भी आगे चल करके बातें करूंगा। और इसी के साथ ही आप सबसे मित्रों आज के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।